दिन भर तारीख 23 जून दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ताशकंद में मोदी मिले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। एनएसजी सदस्यता पर भारत ने चीन से कहा, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रवैया करे अख्तियार।
प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज चाइना टू मेक अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ इंडियाज एप्लीकेशन।
ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहे या बाहर जाए, इस पर ब्रिटेन में हो रहा है ऐतिहासिक जनमत संग्रह। अनिल कुंबले बने टीम इंडिया के नए कोच। बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर बोले,
After doing discussions with the various stakeholders, we have taken the final call that for next one year, Mr. Anil Kumble will be the head.
कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीन से आग्रह किया कि वो एनएसजी की उसकी सदस्यता पर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रवैया अपनाए। हालांकि जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप से पूछा गया कि क्या चीन ने इस मामले पर किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है, तो उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। चीन भारत की एनएसजी की सदस्यता के पक्ष में नहीं है। पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा की रैंगिंग के मामले में उसके दो सीनियर्स के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने केपी अवस्थी नाम की एक नई छात्रा को शौचालय साफ करने वाला कीटनाशक पिलाया। अवस्थी फिलहाल बहुत गंभीर हालत में केरल के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सांस लेने की नली को भारी नुकसान हुआ है, जिसके इलाज के लिए काफ़ी सर्जरी की ज़रूरत होगी और उन्हें बेहतर होने में अभी महीनों लग सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमएसएफ ने कहा है कि उत्तरी पूर्व नाइजीरिया के कैंप में 200 लोग भूख और प्यास से मर गए हैं। कैंप में तकरीबन 20,000 लोग रहते हैं और सभी बोको हराम की कैद से भागकर इधर आए हैं। एमएसएफ के गादा हातिम ने बीबीसी से कहा कि बामा शहर के कैंप में हालात बहुत ख़राब हैं। ज़्यादातर लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। बामा शहर में भी कैंप के अलावा कुछ और नहीं है। ये कैंप सेना की संरक्षण में है। कैंप में करीब 15,000 बच्चे रहते हैं। कैंप के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है और भोजन की भारी कमी है। एमएसएफ के एक डॉक्टर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में लोग यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के फैसले पर हो रहे जनमत संग्रह में वोट दे रहे हैं। बैलेट पेपर पर सवाल लिखा है, क्या ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में रहना चाहिए या उससे बाहर हो जाना चाहिए। इस जनमत संग्रह के लिए 4,60,00,000 लोगों ने वोटर के तौर पर पंजीयन करवाया है। डेमोक्रेट सांसद अमरीकी कांग्रेस में बंदूकों के को मिलने पर अधिक कड़ाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वो लोग रात भर सदन के फर्श पर जमे रहे और कुछ अभी भी वहां मौजूद हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ने सदन को 5 जुलाई तक के लिए स्थगित करने का वोट दे दिया है। हाल के दिनों में एक गे क्लब पर बंदूकधारियों का हमला हुआ था, जिसके बाद मुल्क का एक हिस्सा बंदूक के लाइसेंस और उसकी बिक्री पर कड़ाई का मांग कर रहा है। इंटरपोल का कहना है कि बावजूद एक बड़ा ऑपरेशन चलाने के, वो उन 200 लोगों का पता नहीं लगा पाया है जो मानव तस्करी करते हैं। एजेंसी ने अब तक 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने मानव तस्करी में करोड़ों कमाए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बैठक में भारत ने चीन से कहा कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की उसकी सदस्यता पर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रवैया अख्तियार करे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्ड प्रेसिडेंट शी फॉर चाइना सपोर्ट टू इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यता के लिए चीन के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी को धन्यवाद दिया, जिसके बाद मोदी ने सोल में होने वाली परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक के बारे में बात की, जिसमें भारत की एनएसजी में सदस्यता के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से अपील की है कि वो भारत की अर्जी का उचित और निष्पक्ष आकलन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन को भारत के पक्ष में बढ़ती आम सहमति में योगदान देना चाहिए। चाहिए। विकास स्वरूप के शब्द।
मैं इससे ज्यादा टिप्पणी इस विषय पर नहीं करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट नेगोशिएशन प्रोसेस है सियोल में जो हो रहा है। अब हम इंतजार करते हैं कि सियोल से किस तरह की खबर आती है। मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
विकास स्वरूप ने ये उस सवाल के जवाब में कहा कि मोदी के आग्रह पर चीनी राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया थी, तो उनका कहना था ये एक मुश्किल सौदा है और फिलहाल वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये प्रतिक्रिया आपने विकास स्वरूप के शब्दों में सुनी। इधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों यानी कि एनएसजी देशों की बैठक हो रही है, जिसमें भारत को समूह में शामिल किए जाने की बात पर गौर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से, जो कि इस समय दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में मौजूद है। मैंने उनसे पूछा कि एनएसजी की बैठक में, या ये कहें कि सोल में, आखिरकार चल क्या रहा है।
हालांकि ऑफिशियल्स ने कहा है कि इत्तेफाक की बात है कि ताशकंद में जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शी के दरमियान, और यहां पर जो एनएसजी का मीटिंग हो रहा है, कि ये इत्तेफाक है कि दोनों एक दिन पे ही हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक का ताल्लुक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ एससीओ के बारे में थोड़ा जिक्र किया था अपने मीटिंग में प्रेसिडेंट शी के साथ, लेकिन ज्यादातर उन्होंने जो तवज्जो दी है वो एनएसजी पे दी है, चाइना को एक अपील दी है। अब यहाँ पर सोल में माना जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ एनएसजी में डिस्कस हो रहा है कि भारत का मेंबरशिप क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन के लिए चीन लगातार कह रहा था कि ये बात एजेंडा पर नहीं है, लेकिन हमें पुष्टि मिली है कि ये बात एजेंडा पे है और एक डिस्कशन आज शाम जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जो पल्ला भारी पड़ता है कि एक भी मेंबर जो एनएसजी का है वो इस प्रोसेस को डीरेल कर सकता है, क्योंकि ये कंसेंसस पे निर्भर है। अगर लगता है कि चीन अड़े रहेगी, चीन हटेगी नहीं, तो शायद जो 4-5 देश अब तक भारत के साथ नहीं आए थे वो भी शायद अड़े रहें, और फिर भारत की कामयाबी के आसार कम होंगे। लेकिन अगर चीन मान जाए कि वो किसी तरह से एक प्रोसेस पे अग्री कर जाए, तो ये माना जाता है कि ये जो आज शाम की मीटिंग है, जो हेड्स ऑफ डेलीगेशन मिल रहे हैं सोल में, और कल इसके बाद जो पूरा सेशन मिलेगा सुबह को, वो किसी तरह का प्रोसेस आगे कर सकता है, ताकि भारत बिल्कुल निराश ना हो और बल्कि अगले सेशन में शायद उसको कामयाबी मिल पाए।
अभी कुछ देर पहले भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है विकास स्वरूप, उन्होंने ब्रीफिंग की और कहा कि दोनों देशों के नेताओं की बातचीत हुई और अब भारत ने गेंद जो है वो चीन के पाले में डाल दी है।
गेंद जो चीन के पाले में था वो तो काफी अरसे से है, तो मुझे लगता है जब दो देश के नेता ऐसे मिल रहे हैं और दोनों देशों को पता है किस बात पे बातचीत होनी है, बल्कि हमारे विदेश सचिव एस जयशंकर भी चीन 2 बार जा चुके हैं इसी विषय पे बात करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि और बातचीत की जरूरत है, अब निर्णय की जरूरत है। और ये मतलब आशा की जा रही थी कि चीन अगर निर्णय ले पाए भारत के पक्ष में अगले 2 दिन में, फिर ये प्लेनरी सेशन में लिया जा सकता है, नहीं तो या तो एक स्पेशल प्लेनरी सेशन एनएस को बुलवाना पड़ेगा इसी मुद्दे पे, या शायद फिर अगले साल देखना पड़ेगा। लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो इस साल ही ये मेंबरशिप को पुश करना चाहता है। बहुत लोगों ने कहा था कि आप वेट कर लें, आप थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन भारत ने भारतीय सूत्रों ने, गवर्नमेंट के सूत्रों ने बहुत स्पष्ट से कहा था 2 दिन पहले कि हम मेंबरशिप इमीडिएटली चाहते हैं। तो अगर भारत का ये रुख है और चीन भी अपने बात पे अड़ा हुआ है, तो फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक भारत या चीन अगर थोड़ा सा मतलब लचीलापन दिखा दें, तो शायद ये बात आगे भी बढ़ सकती है।
सोल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर बता रही थी कि वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह से कूटनीति चल रही है। इस मामले में देखा जाए तो 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, दक्षिण कोरिया के सोल में एनएसजी की बैठक हो रही है जहां की भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर मौजूद हैं, और चीन में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं। यानी कि 3 तरफ से बात चल रही है। मैंने बात की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर अलका आचार्य से और पूछा कि हाल ही में जिस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान आया या फिर बाकी बयान आए, जिसमें कि लगा कि चीन का रवैया थोड़ा सा बदल रहा है, तो क्या चीन का रुख आपको कैसा लगता है?
चीन का जो पोजीशन है उन्होंने कोई खास बदला नहीं है, उनका स्टैंड वही रहा है। एक हम हैं जो इसको इतना तूल दे देकर इसको एक तरह से एक ऐसा मुद्दा बना दिया है जो कि बस अब चीन ही इसके और हमारे बीच में आड़े खड़ा है।
पूरे एनएसजी के मामले को देखें तो आपको लगता है कि भारत ने अपनी पूरी राजनीतिक और राजनयिक ताकत झोंक दी है?
बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, उन्होंने खुद 30 देशों से बात की है, विदेश सचिव, तकरीबन सभी लोगों ने इसके ऊपर एक बहुत बहुत इसको बहुत अहमियत दी है। और जहां भी कोशिश हुई है कि जितने भी देश हैं 48, उन सब के ऊपर ये जमाया जाए कि भारत का जो कैंडिडेचर है वो बहुत ही उत्तम है। बहुत ज्यादा इसको हमने एक प्रेस्टीज इशू तो कहना गलत है, लेकिन हाँ, एक ये बहुत ऐसा जरूरी एक मुद्दा बना लिया है कि ये अब एक हमारे नेशनल एक ऑब्जेक्टिव का सबसे एक अहम भाग है।
चीन और भारत के अगर मैं दरमियानी रिश्तों की बात करूं तो भारत और चीन की स्थिति इस समय ऐसी है कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन को ना तो वो बचा पा रहे हैं और ना ही उससे वो बच पा रहे हैं। चाहे वो मसूद अजहर का मामला हो जिसमें चीन का जो है वो भारत के खिलाफ ही रवैया नजर आया है, और भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते बड़े मजबूत हैं क्योंकि भारत को वो चीन बहुत ज्यादा तादाद में सामान बेचता है।
क्योंकि हमें ये जो एक खासकर जो एनएसजी मेंबरशिप है इसको हासिल करने की इतनी लालसा है कि चीन का जो पोजीशन है वो ऐसे ही लगता है कि ये हमारे खिलाफ है। खिलाफ इस तरह से है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत को मेंबरशिप मिली तो फिर बाकी देश जो नॉन एनपीटी मेंबर्स हैं उनका क्या होगा। तो एक तरह से वो एक सैद्धांतिक और एक तकनीकी बात को बार बार सामने ला रहे हैं, और वो बल्कि सारा उसके यूएस के ऊपर डाल रहे हैं कि पहले ये रूल्स और नियम कायदे कानून अमेरिका ही बनाता है और फिर वही इनको तोड़ता है, उलंघन।
मतलब चीन की जो टक्कर है वो भारत से नहीं अमेरिका से है
एक तरह से देखा जाए तो, हाँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय जो सत्ता का एक तरह से जो बैलेंस है वो उसको ध्यान में है, और अगर भारत को मिलता है तो वो पाकिस्तान को भी जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये तो एक चीन की स्ट्रैटेजी साफ है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम भारत और चीन के जो जो रिश्ते हैं उनका पूरा स्वरूप देखें तो एक और मुद्दा है जिसके ऊपर भारत और चीन के मतभेद हैं, और भी हमारे मुद्दे हैं, लेकिन रिश्तों में भी बहुत व्यापकता आ रही है। थोड़ा सा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये पोजीशन जो चीन की है प्रो पाकिस्तान और टेक्निकलिटी, ये कोई हमारे लिए नई बातें नहीं, तो इनको हम इस तरह से ना बढ़ाएं कि अब चीन ही हमारे और हमारे जो सबसे बड़ी लालसा है एनएसजी मेंबरशिप वो आड़े खड़ा है और चीन मतलब सारा मामला बिगाड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चीन पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, और भी हैं।
एनएसजी में चीन के रवैये और भारत की कूटनीति का विश्लेषण कर रही थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर अलका आचार्य।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। ब्रिटेन में आज एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह हो रहा है जिससे ये तय होगा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बना रहेगा या फिर बाहर जाएगा। ब्रिटेन के इतिहास में ये अब तक का तीसरा राष्ट्रीय जनमत संग्रह है। लगभग 4,65,00,000 मतदाता इसमें भाग लेने के योग्य हैं, जो किसी भी ब्रितानी चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या है। सीधे कार्यक्रम में आपको लंदन स्टूडियो ले चलते हैं जहाँ पर मौजूद है बीबीसी के स्टूडियो में हमारी संवाददाता शिवानी कुक। शिवानी, मतदान चल रहा है, माहौल क्या है ब्रिटेन में?
माहौल तो इस तरह से है कि सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान केंद्र खुल गए थे और रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे, और कई मतदान केंद्रों से बीबीसी के श्रोता वहाँ के माहौल की तस्वीरें हमें लगातार भेज रहे हैं। इस जनमत संग्रह के कुछ मुख्य पात्र सुबह ही अपना वोट डालने पहुंच गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपनी पत्नी समांथा के साथ लंदन के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन भी लंदन के इसलिंगटन मतदान केंद्र के बाहर नजर आए। ब्रिटेन के यूकिप पार्टी के लीडर नाइजल फराज ने भी पोलिंग बूथ के बाहर तस्वीरें खिंचवाई जहां पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है ब्रिटेन के सोशल मीडिया पर रेफरेंडम की ही चर्चा है, और ब्रितानी फेसबुक और ट्विटर पर भी अपने वोट डालने की तस्वीरें लगातार पोस्ट कर रहे हैं।
शिवानी, आज तो वहां पर बारिश हो रही है ना?
जी बिल्कुल। तो आज ब्रिटेन के दक्षिण हिस्से में भारी बारिश हो रही है और पानी से सड़कें भरी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग वोट देने पहुंचे और इसकी तस्वीरें भी उन्होंने बीबीसी के साथ शेयर करी, बीबीसी को भेजी। और इसके चलते कई जगह पर मतदान केंद्र भी बदलने पड़े, खास करके किंगस्टन नाम का एक इलाका है लंदन के पास, जहां पर उन्हें 2 मतदान केंद्र बदलने पड़े। और एक और खास जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी कि मतदान के दौरान यहाँ पर जो ब्रितानी ब्रॉडकास्टर्स ब्रिटेन के, वो उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत जनमत संग्रह की बहुत ही सीमित रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं। और लेकिन मतदान जैसे ही 10 बजे बंद होगा तो बीबीसी के विभिन्न चैनल और प्लेटफॉर्म्स पर नतीजों की लाइव रिपोर्टिंग आपको मिल सकती है।
शिवानी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि आगे की प्रक्रिया क्या है।
देखिए, 10 बजे जैसे ही ये बंद हो जाएंगे मतदान केंद्र, तो ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको हमें 382 बैलेट बॉक्सेस गिनती केंद्र पर रखे जाएंगे, और इनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सभी 380 स्थानीय निकाय और उत्तरी आयरलैंड और गिब्राल्टर का एक एक केंद्र शामिल होगा। और रात भर जो है गिनती होती रहेगी और मतदान के जो नतीजे हैं वो सामने आते रहेंगे। और असली उम्मीद करी जा रही है कि शुक्रवार दोपहर तक कुछ बिल्कुल सामने आएगी एक तस्वीर, लेकिन इसका निकष ऐसे निकलेगा कि जब जिस भी पक्ष को कुल मतों में से आधे से ज्यादा मत मिल जाएंगे उसकी जीत मानी जाएगी।
जी शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद हम ये खबर भी प्रसारित करेंगे कि आखिरकार किसके पक्ष में गए हैं ये नतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया लंदन स्टूडियो से शिवानी आपका। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे हम खेल की, और खेल की बड़ी खबर यह है कि अनिल कुंबले को इस साल के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रजत शर्मा की रिपोर्ट।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। बीसीसीआई ने अनिल कुंबले को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। रवि शास्त्री और टॉम मूडी जैसे दिग्गजों को पछाड़कर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने अनिल कुंबले। धर्मशाला में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले एक साल के लिए अनिल कुंबले होंगे टीम इंडिया के हेड कोच।
We are glad to say BCCI has been very transparent as far as the selection of
BCCI ने कोच के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, और हमें ये बताकर खुशी हो रही है कि अगले एक साल के लिए अनिल कुंबले होंगे टीम इंडिया के हेड कोच। जहां तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच और सपोर्ट स्टाफ की बात है तो उसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। अनुराग ठाकुर के शब्द। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और अनिल कुंबले में ही इस पद के लिए टक्कर थी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और संजय जगदाले की सलाहकार समिति ने मुख्य कोच का चयन किया। बोर्ड को कोच के आवेदन के लिए कुल 57 आवेदन मिले। बोर्ड ने सूची में से 21 लोगों का इंटरव्यू किया। आधिकारिक तौर पर अजीत भारतीय टीम के पहले कोच थे। इसके बाद बोर्ड ने संदीप पाटिल, अंशुमन गायकवाड़ और कपिल देव को कोच नियुक्त किया था। फिर दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन भारतीय टीम के कोच बने। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई टूर्नामेंट जीते और अपनी जमीन पर विश्व कप भी जीता। कर्स्टन के बाद डंकन फ्लेचर ने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनका कार्यकाल कर्स्टन की तरह सफल नहीं रहा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी विजय दहिया ने बताया कुंबले का कोच बनना कितना फायदेमंद होगा भारतीय टीम के लिए।
वो स्पिनर रहे, सब्र उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, और सब्र हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर एक नई टीम बन रही है हमारी। एकदम से हम ये सोचें कि ये उस तरीके का प्रदर्शन करने लगेगी जैसी हमें उम्मीद है, उसमें समय लगेगा। तो जब आप बनती हुई टीम के साथ आके जुड़ते हैं तो आपके लिए भी काम आसान हो जाता है। एक बनी बनाई टीम के साथ जब आके जुड़ते हैं तो फिर थोड़ा सा काम मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पहले ही पता होता है कि उम्मीदें क्या है। टीम की बात करें तो उसमें भी नए नाम है, वो भी एक नए सफर कर रहे हैं। टेस्ट के कप्तान हमारे को इतने पुराने नहीं है, वो भी नए कप्तान। और जहां तक बात करी तो विराट एक एग्रेशन लेके आते हैं, कुंबले एक स्थिरता लेके आते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है इन दोनों का टीम के लिए। तो इसलिए हमें समय देना होगा, जरूर देना होगा, और फिर सोच जो हमारी होनी चाहिए ना, वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि वो आए हैं वो अच्छा करेंगे।
कुंबले वेस्ट इंडीज दौरे से अपना पद संभालेंगे। भारतीय टीम विराट कोहली की अगुवाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 6 जुलाई को रवाना होगी।
ये रिपोर्ट रजत शर्मा की नहीं बल्कि रजत चांदना की थी, और मेरे सामने इस समय मौजूद है पंकज प्रियदर्शी। पंकज, अनिल कुंबले, क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं, क्रिकेट को आप बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, अनिल कुंबले की शख्सियत, उनका क्रिकेट करियर किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए मोहनलाल जी, जैसा कि आपने कहा कि अनिल कुंबले को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है हेड कोच की, लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते या जिन लोगों ने भी उन्हें क्रिकेट खेलते देखा, एक बड़े ही शांत, संयत और कह सकते हैं एकदम टिपिकल मिडिल क्लास से उठ के आगे आने वाला प्लेयर, जो मैदान पर अपने खेल के समर्पण के कारण चर्चित रहा। और ये रिकॉर्ड भी उनका बताता है कि अब देखिए टेस्ट क्रिकेट में उनके पास 619 विकेट थे और वनडे में 337 विकेट है। लेकिन जब हेड कोच की बात बनी तो कई लोग ये सवाल उठाते थे कि जिस तरह का शांत और संयत क्रिकेटर अनिल कुंबले है, मैदान पर तो कोच को खासकर उस तरह स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है।
तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि अनिल कुंबले को मेरे ख्याल से किसी ने क्रिकेट के मैदान में एग्रेशन में नहीं देखा है।
शायद ही, मतलब ऐसे बहुत कम मौके आए होंगे कि जब उनको उस आक्रामक तरह से, जिस तरह आप सौरभ गांगुली को देखते हैं या
श्रीशांत को हमने देखा,
या हरभजन सिंह को आपने देखा। और इसलिए कई हलकों में इस तरह की अटकलें भी चल रही थी कि शायद रवि शास्त्री को मौका मिल जाएगा, जो टीम के डायरेक्टर भी बने रहते, उनकी विराट कोहली से बहुत अच्छी बनती थी जो अब टेस्ट कैप्टन है। लेकिन अनिल कुंबले के पक्ष में मोहन, जो सबसे बड़ी बात जाती है क्रिकेट के एक रणनीतिकार के रूप में, और भारतीय क्रिकेट टीम को इस समय एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट यानी रणनीतिकार की जरूरत है जो टीम को टेस्ट क्रिकेट में वही ऊंचाई पर ले जाए जो वर्षों पहले भारतीय टीम एक बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन पर थी। तो बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है। थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर आपके पास समय है तो मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा कि अनिल कुंबले की शख्सियत क्रिकेट के मैदान पर जब लोग चर्चा करते हैं तो वो याद करते हैं आज से 14 साल पहले की घटना। इंटिका का मैदान था मोहनलाल जी, और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम खेल रही थी और उनके जबड़े पर गेंद आके लगी थी, मर्व डिल्लन की गेंद, लेकिन उनको लगा कि शायद वो नहीं खेल पाएंगे। और भारतीय टीम जो थी बहुत ज़्यादा उन पर आश्रित थी क्योंकि लीड स्पिनर भारतीय टीम का एक ऐसा गेंदबाज जिस पर भारतीय टीम इतना ज़्यादा भरोसा करती थी, उस टूटे हुए जबड़े के साथ वो मैदान पर उतरे
और वो तस्वीर सबने देखी, सब पट्टी बंधी हुई,
बंधी हुई। हाँ। और वो तस्वीर किसी को भूलती नहीं। और विवियन रिचर्ड्स ने कहा था कि ये बताता है कि अनिल कुंबले में क्रिकेट को लेकर कैसी भावना है, कितना साहसिक वो प्लेयर है। और वो वहाँ की वो तस्वीरें और अनिल कुंबले का वो जज्बा उनको क्रिकेट के प्रति उनके समर्पण को कहीं ना कहीं बताता है। तो भारतीय क्रिकेट टीम को अनिल कुंबले के रूप में एक ऐसा प्लेयर बनाए जिसकी समर्पण पर शायद ही कोई प्रश्न चिन्ह लगाए।
जरा आंकड़ों के लिहाज से बता दें कि अनिल कुंबले के क्या आंकड़े हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि 2007 और 8 में वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने 132 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 619 विकेट लिए, रन 2506 बनाए, एक शतक भी उनके नाम है। और वनडे की अगर बात करें तो 337 विकेट उन्होंने लिए हैं 271 मैच खेलते हुए। तो रिकॉर्ड कोई अनिल कुंबले का टीम में रहना कोई बल्लेबाजी, हाँ बल्लेबाजी भी नहीं, बल्लेबाजी
बॉलर नहीं था, परफेक्ट 10।
हाँ, फिरोज शाह को, वही मैं आपको बताने जा रहा था कि अनिल कुंबले के नाम पे जो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं गेंदबाजी को लेकर, एक वो भी रिकॉर्ड है फिरोज शाह कोटला पे 10 विकेट लेने का। तो एक परफेक्ट 10 लेने वाला परफेक्ट कोच बनेगा कि नहीं, ये हम आप सब देखेंगे आने वाले एक साल के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया पंकज प्रदर्शी, अनिल कुंबले किस तरह से कोच बने। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे आपकी चिट्ठियों की जो कि आपने ही हमें भेजी है।
आपकी राय, बृहस्पतिवार की शाम नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का,
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं, बहुत सारी चिट्ठियां लेके आई हैं,
आप पढ़ूंगी।
इतना उलट पलट क्या देखना चाह रही हैं आप?
मैं दरअसल इनका नाम पढ़ने की कोशिश कर रही थी, इन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है तब भी मुझे दिखाई नहीं दिया कहां लिखा है।
बताइए।
शिव कुमार अंगारे इनका नाम है, ग्राम बंगला मटिया माहुल सिकोसा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये पोस्ट कार्ड लिखा है,
छाप करके लिखा है।
हाँ, छाप के प्रिंटेड है और पोस्ट कार्ड लिख के भेजा है, लेकिन पूरी टीम को इन्होंने नमस्कार बोला है। और मोहम्मद अली पर इंडिया बोल कार्यक्रम के स्थान पर जो विशेष प्रसारण किया गया वो इनको बहुत पसंद आया। इनका कहना है चलो रियो की ये तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यानचंद और उनके अनुज के बारे में अनछुए पहलुओं को जाना, पर कहते हैं कि विवेचना की कीमत पर आपको ये नहीं करना चाहिए था।
देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है शिव कुमार साहब, लेकिन समस्या ये है कि विवेचना भी रेहान फजल करते हैं और चलो रियो भी वही करते हैं। तो रेहान फजल तो एक ही है, कार्यक्रम है दो, तो आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ओलंपिक्स जब समाप्त होगा उसके बाद फिर विवेचना आएगी।
ये अगला पोस्ट कार्ड अगम प्रकाश का है और इन्होंने हरदा मध्य प्रदेश, जो मुझे समझ में आ रहा है इनकी स्टैंप से, कहते हैं कि कैलाश बदवार और उससे पहले के उद्घोषकों की आवाजें इन्होंने सुनी हुई हैं और लेकिन आज के भी सभी उद्घोषकों की तारीफ कर रहे हैं। सजेस्टन यानी कि सुझाव इनका है कि कार्यक्रम का समय जो है शाम के कार्यक्रम का उसको बढ़ा दिया जाए और जनरल नॉलेज या विज्ञान से संबंधित संबंधित कार्यक्रम शुरू किए जाने की इन्होंने गुजारिश की है।
बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपकी गुजारिश या आप ये मांग है इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके सुझाव तो बहुत अच्छे हैं। जहां तक सामान्य ज्ञान का सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है, तो हमारे सभी कार्यक्रम जनरल नॉलेज ही बढ़ाते हैं हमारे श्रोताओं की और हमारी भी, लेकिन स्पेशल खास प्रोग्राम उसके लिए किया जाए ये अभी संभव नहीं है। हाँ, जहां तक सवाल है विज्ञान का और आर्थिक विषयों पर कार्यक्रमों का, उस पर हम लोग सोच रहे हैं। देखिए ये कब तक होता है मैं अभी आपको कोई समय नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपके सुझाव शर्मा थे।
डॉक्टर अनिल कुमार ने बहुत ही खूबसूरत लिखाई
जी,
है।
जी मैं देख रहा हूँ इन्होंने अपने लेटर हेड पे ये सुंदर पेन से लिखा है और बहुत ही सुंदर है।
कस्बा पूर्णिया बिहार से चिट्ठी लिखी है और ये कहते हैं 13 जून को चौथी सभा में जो एक पेशकश थी एक दृष्टिहीन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हुई रवि प्रकाश जी की रिपोर्ट का प्रसारण सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने एक बात लिखी है कि जो लोग वर्तमान कार्यक्रमों की तुलना समय सापेक्षता पर विचार किए बिना पुराने कार्यक्रमों से करने की कोशिश करते हैं उनसे इन्हें थोड़ी सी शिकायत है और ये कह रहे हैं कि समय की मांग के अनुरूप कार्यक्रम किए जाते हैं तो इस तरह की मांग श्रोता ना करें।
जी डॉक्टर अनिल कुमार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चिट्ठी में लगातार नहीं देखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लगातार लिखेंगे क्योंकि इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में चिट्ठियाँ आती हैं तो बहुत खुशी होती है। जो आपने बात कही श्रोताओं की टिप्पणी पे, ये बात सच है, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, राजनीति बदलती है, स्थितियाँ बदलती हैं, उसी के हिसाब से आवाज़ें बदलती हैं रेडियो में, लोग बदलते हैं, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन जैसे हम पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो हमें दिल में एक हूक सी उठती है, वैसे हमारे श्रोताओं का भी हाल है।
राजेश जी, एहसान असगर और इरशाद अहमद का ईमेल है और इन दोनों ने, निखिल रंजन ने जो दुनिया जहान में उड़ता मैक्सिको पेश किया उसकी इन्होंने तारीफ की है। सुजीत कुमार ने सीतामढ़ी बिहार से ईमेल लिखा है, उन्होंने भी दुनिया जहान की तारीफ की और लिखा है कि निखिल रंजन की आवाज़ इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि राजेश जोशी की कोई रिपोर्ट सुनने को आजकल नहीं मिलती है।
राजेश जोशी की रिपोर्ट, वाकई ये आपने बिल्कुल मतलब मेरी दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया। मैं खुद को एक दरअसल रिपोर्टर ही मानता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ आपके लिए रिपोर्टें लेके आऊँ, लेकिन अब जिम्मेदारी कुछ बदल गई है, आप जानते ही होंगे, समझते ही होंगे। मैं आपकी चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, मैं कार्यक्रमों को देखता हूँ, जिम्मेदारी बदलती है तो काम भी बदलता है। मैं बहुत अफसोस भी होता है कई बार कि मैं रेडियो में कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ। कोशिश मैं ये करूँगा, यही मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि कभी कभी मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करूँ, जैसे इंडिया बोल मैं कोशिश करता हूँ कि प्रस्तुत करूँ कभी।
दिनेश कुमार का ईमेल है हमें, गांव देवराला जिला भिवानी हरियाणा से, और इन्होंने पहली बार ईमेल भेजा है। ये बीए स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं कि अपने पापा के साथ इन्होंने बीबीसी समाचार सुनना शुरू किया था। कह रहे हैं कि शुरुआत में भारत के साथ साथ अन्य देशों का समय भी कार्यक्रम में बताया जाता था जो अब नहीं बताया जाता है।
अच्छा, तो इस वक्त जब हमारा कार्यक्रम चल रहा है आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में क्या समय हुआ है। देखिए, जब आप ये कार्यक्रम सुनते थे तब इंटरनेट नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था, अब सब कुछ उपलब्ध है लोगों को, टेलीविजन की इतनी सारे कार्यक्रम होते हैं, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा तो लोग सोशल मीडिया से और दूसरे जरियों से।
और कार्यक्रम का वक्त इतना सीमित है।
मुझे अब जब वक्त की बात आई है तो मुझे हेमंत कुशवाहा बाहर से बता रहे हैं कि अभी अपना बोलना बंद कीजिए क्योंकि समय समाप्त हुआ।
नमस्कार।
कार्यक्रम में आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब वक्त है मुख्य समाचार सुनने का।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीन से आग्रह किया कि वो एनएसजी की उसकी सदस्यता पर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रवैया अपनाए। चीन भारत की एनएसजी की सदस्यता के पक्ष में नहीं है। पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा की रैंगिंग के मामले में उसके दो सीनियर्स के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने केपी अवस्थी नाम की एक नई छात्रा को शौचालय साफ करने वाला कीटनाशक पिलाया था। इंटरपोल का कहना है कि बावजूद एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की वो उन 200 लोगों का पता नहीं लगा पाए हैं जो मानव तस्करी करते हैं। इसमें वो गिरोह भी शामिल है जो अल्बेनिया से लोगों को अल्बेनिया का वो गिरोह भी शामिल है जो कि फ्रांस से नौकाओं के जरिए ब्रिटेन लोगों को ले जाता है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।